ऊर्जा से लबालब मेरे आप सभी नौजवान साथियों, आपको डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज 7 अप्रैल 2017 है, दिन है शुक्रवार, और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। आप सबके साथ ही मैं स्वागत करता हूं विशेष रूप से अपने उन दो नौजवान साथियों का भी, जिन्होंने एकेडमी के अक्टूबर नवंबर में होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं राहुल त्यागी, आप नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से हैं, और रमेश नैन, आप कन्हेरी हरियाणा से हैं। तो राहुल और रमेश, आप दोनों साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि आज शुक्रवार है, और शुक्रवार को मैं कुछ सूचनाएं आप लोगों को नियमित रूप से देता हूं। उसी के तहत कुछ सूचनाएं हैं। पहला तो यह कि शनिवार और रविवार को डेली ऑडियो लेक्चर नहीं आएगा, और बट नेचुरल की लाइफ मैनेजमेंट भी नहीं आएगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स होती हैं वो एज इट इज आपको शनिवार को अवेलेबल कराई जाएंगी। सभी अखबारों की आपको प्रेस क्लिपिंग्स मिलेंगी, और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र के हिंदी इंग्लिश और योजना के हिंदी इंग्लिश के आपको टोटल 4 आर्टिकल, यानी कि 2 हिंदी के और 2 इंग्लिश के आर्टिकल्स मिलेंगे। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, वीकली क्वेश्चंस एक दिया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि जो वीकली क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसके साथ आप जूझने की कोशिश कर रहे होंगे, जूझते होंगे, और ऐसा करके सही पूछिए तो आप क्वेश्चन के साथ भी न्याय कर सकेंगे और खुद के साथ भी। और हमारे मेरे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनको स्पेशल ऑडियो गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस सूचना के बाद अब हम लोग आते हैं न्यूज एनालिसिस पर। मित्रों, आप लोगों ने न्यूज सुनी ही होगी, मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप लोगों में, मुझे ऐसा लगता है कि अब न्यूज सुनने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा सा बदल रहा है। ये मैं केवल इस आधार पर कह रहा हूं जो मुझे मेल से एहसास होता है। फ्रेंड्स, एक मैं आपको पहले करेक्शन बता दूं, और वो करेक्शन ये है कि कल मैंने जो दलाई लामा के आर्टिकल की डेट बताई थी वो थोड़ी सी गलत हो गई है। दलाई लामा वाले आर्टिकल की जो डेट है, जो दैनिक हिंदुस्तान में छपी थी, वो 28 मार्च है। शायद मैंने कल 20 मार्च मैंने कहा था, वो जो मेरे पास मेल आया था तो रीडिंग में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ी हो गई होगी। 28 मार्च को दलाई लामा का से संबंधित आर्टिकल आया था जो चीन से संबंधित था, और 20 मार्च को जो आर्टिकल आया था वो मालदीव से जुड़ा हुआ आर्टिकल था, और ये दोनों आर्टिकल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, तो प्लीज आप करेक्ट कर लें और उस हिसाब से निकाल कर उसे आप उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं न्यूज एनालिसिस पर आऊं, एक मैं घोषणा करना चाहूंगा, और वह घोषणा यह है कि इस बार सोमवार को जो मैंने थोड़ी सी तब्दीली की थी और एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के आप लोगों से विस्तार से बातें की हैं, इस पर बहुत अच्छे आप लोगों के रिएक्शंस हैं, आप लोगों ने इसका बहुत अच्छे से स्वागत किया है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब मैंने हमेशा के लिए तो फैसला नहीं किया है, लेकिन फिलहाल मंडे के लिए, जो कमिंग मंडे होगा उसके लिए मैंने फैसला किया है कि मैं एक पर्टिकुलर टॉपिक को अधिक तरजीह दूंगा, और मैंने बल्कि उसके लिए टॉपिक भी सेलेक्ट कर लिया है, और उस टॉपिक के सिलेक्शन का संबंध आज के ही न्यूज आइटम से है, तो मैं वहां से शुरू कर रहा हूं। पहले मैं आपको वो न्यूज आइटम बता दूं। आपने आज के अखबारों में एक रविन्द्र गायकवाड़, जो उस्मानाबाद महाराष्ट्र के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लोकसभा सदस्य हैं, इनकी घटना से बहुत अच्छे तरह परिचित है कि किस तरह से एयरलाइंस के उन्होंने 60 साल के एक बुजुर्ग कर्मचारी को चप्पल से पीटा, और उसको लेकर के फिर पूरे देश में एक बहस छिड़ गई है और पार्लियामेंट में भी ये बहस चल रही है। उसको लेकर के कल भी आपने जो लोकसभा में जो घटना हुई उसका, उसको भी अखबारों में पढ़ा होगा, प्रोमिनेंटली अखबारों में छपा है। इसमें नैतिकता का सवाल, लोकसभा का सवाल, अनुशासन का सवाल, ढेर सारे सवाल जुड़े हुए, नेतृत्व का सवाल ढेर सारे जुड़े हुए हैं। इस टॉपिक को मैं केंद्र में रखकर आपसे जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर होता है, اس کے بارے میں باتیں کروں گا. یہ منڈے کی بات بتا رہا ہوں. اسی کے ساتھ ہی میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہوں گا, اور وہ یہ بھی آپ نے آج کے نیوز پیپر میں پڑھا ہے. ریزرو بینک نے ابھی اپنی جو مودرک نیتی جو ہوتی ہے 2 مہینے کی وہ گھوشت کی ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریزرو بینک کے گورنر ہیں انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا. اسٹیٹمنٹ یہ کہ جو اتر پردیش میں ابھی سرکار نے کسانوں کے قرض معاف کیے ہیں, سندربھ تو وہی تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو قرض معافی کا جو معاملہ ہے یہ صحیح معاملہ نہیں ہے, اور اس میں انہوں نے جو شبد یوز کیا ہے کہ اس سے ایماندار ऋण संस्कृति एवं नैतिकता का संकट पैदा होता है. ईमानदार ऋण संस्कृति और नैतिकता का संकट पैदा होता है. तो यहां भी आप देख रहे हैं कि नैतिकता है. अब इन दोनों नैतिकताओं को देखिए, एक तरफ गायकवाड़ जी के संदर्भ में हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, दूसरा सरकार ने ऋण माफी कर दी उस संदर्भ में हम नैतिकता की बात कर रहे हैं, और ये दोनों बड़ी घटनाएं हैं. तो मित्रों, इन दोनों घटनाओं को आधार बनाकर मैं मंडे के डेली ऑडियो लेक्चर में इस पर विस्तार के साथ बातें करूंगा. तो पहले मेरी यह सूचना थी. अब मैं आज के न्यूज पर आता हूं. फ्रेंड्स, एक तो छोटी सी खबर है, उस पर मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अयोध्या का मामला है, अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने का जो मामला है, बाबरी मस्जिद का मामला है, इस पर अब जल्दी सुनवाई हो और इसे 2 साल में निपटा लिया जाए. ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है. ये केवल आपके दिमाग में दर्ज कराने के लिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं. देखते हैं कि आगे इस पर क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट इससे पहले यह भी कह चुका है कि इसे आपस में बैठकर सुलझा लिया जाए, और अगर लोग चाहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मध्यस्थता करने को भी तैयार है. तो आपने देखा कि कुछ लोग रेडी हैं, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, और ये होता ही है. अब देखते हैं कि आगे किस रूप में बढ़ता है, तब फिर हम इस पर बातें करेंगे. दूसरी जो घटना है फ्रेंड्स, वो अखबारों से आप लीजिए, सीरिया की घटना है. इसकी थोड़ी सी चर्चा मैंने कल की थी, खासकर केमिकल वेपन, रासायनिक हथियार के संदर्भ में. आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये मामला कितना जोर पकड़ रहा है. संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की बाकायदे बैठक हो गई है. अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया है कि यदि संयुक्त राष्ट्र संघ इसे पारित नहीं करेगा तो वो एक तरफा अटैक सीरिया पर करेगा. और सुबह सुबह मैंने ब्लॉग में अपने न्यूज मोबाइल पर देखा है कि शायद अमेरिका ने मिसाइल्स भी 50 स्थानों पर दाग दिए हैं. देखते हैं कि ये क्या रूप लेता है. मैं यहां आपको थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि बताऊंगा फ्रेंड्स, कि जो सीरिया है, आईएसआईएस आप सुनते हैं, इसमें एक जो एस है वो सीरिया से ही जुड़ा हुआ है. एक एस तो स्टेट से जुड़ा, इस्लामिक स्टेट. फिर जो दूसरा आई है वो इराक से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद एस है वो सीरिया से जुड़ा हुआ है. इराक और सीरिया, मतलब इन पूरे के पूरे उसमें इस्लामी स्टेट स्थापित करने की बात हो रही है. अभी जो सीरिया में जो राष्ट्रपति हैं, इस संदर्भ में आप केवल इसको समझ लें, जो राष्ट्रपति वहां के हैं सीरिया के, जो असद जी हैं, वो इस्लामिक, मतलब आप ये कह लीजिए कि इन सबसे लड़ रहे हैं, आईएसआईएस से एक तरह से उनकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन राष्ट्रपति को उतार करके इस पर हमारा कब्जा हो जाए. तो राष्ट्रपति रोकने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसमें प्रॉब्लम कुल मिलाकर ये हो रही कि दो विश्व की जो दो बड़ी शक्तियां हैं, यानी कि एक रूस और दूसरा अमेरिका, रूस राष्ट्रपति का समर्थन कर रहे हैं, असद का समर्थन कर रहे हैं. उनका ये कहना है कि नहीं, अगर हम असद को समर्थन देंगे तो ये जो विश्व आतंकवाद इस तरीके का जो इस्लामिक आईएसआईएस है उस पर नियंत्रण किया जा सकता है. अमेरिका राष्ट्रपति का विरोध कर रहा है, और वहां के वो एक दूसरे ग्रुप को समर्थन दे रहा है जो असद के, आप यूं कह लीजिए कि विरोधी है, लेकिन वो आईएसआईएस के लोग नहीं है, लेकिन असद के विरोधी है. अमेरिका उनका समर्थन कर रहा है, या यूं कह लीजिए कि वो असद का विरोध कर रहे हैं. तो यहां देख रहे हैं कि रूस राष्ट्रपति के साथ है और अमेरिका राष्ट्रपति के विरुद्ध है. तो अभी आप केमिकल वेपन्स के मामले में भी आप देखेंगे कि रूस असद का समर्थन कर रहा है केमिकल वेपन, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जो रासायनिक जो अटैक किया गया है वो सरकार ने खुद कराया है, राष्ट्रपति असद की ही सेना ने कराया, ताकि आईएसआईएस को खत्म किया जा सके. सरकार इस बात को स्वीकार नहीं कर रही है. अब अमेरिका को मौका मिल गया है सरकार को घेरने का, वो कह रहे कि नहीं, सरकार ने किया है. तो अब देखते हैं कि क्या होता है. तो मैंने आपके इसकी बेसिक जो है वो केवल स्पष्ट करने की कोशिश की है, ताकि इससे जुड़ी हुई जो घटनाएं आप पढ़ें सुने तब आपको ये समझ में आ जाए. दोस्तों, जो एक दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो है जीएसटी। आपने देखा कि पारित हो गए। देखिए, जब कोई चीज इतनी ज्यादा चर्चा में आ जाती है ना, इस पर बहुत ज्यादा जब लिखा जाता है तो याद रखिए, सिविल सर्विस में फिर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अब जीएसटी पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जीएसटी की जब शुरू हुई थी ना, बात जब शुरू हुई थी 2013 में 14 में, उससे थोड़ा सा पहले, तो उस समय उस पर प्रश्न पूछा गया। आप मेंस के क्वेश्चन उठा करके देखिए। लेकिन अब इस पर इतनी बात हो चुकी है कि अब मुझे नहीं लगता है कि जीएसटी पर सीधे सीधे कुछ पूछा जाएगा। तो क्या हमारे लिए टॉपिक बेकार हो गया? नो, टॉपिक तो बेकार हो ही नहीं सकता। मुझे लगता है कि अब जो जीएसटी पर क्वेश्चन बनेगा वो इसके सहकारी संघवादी स्वरूप को लेकर बनेगा कि कैसे इसमें हमें एक जो फेडरल स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा है, वो बहुत उसकी बड़ा एक खूबसूरत उदाहरण दिखाई दे रहा है। आपको इस पर तैयारी करनी है। कैसे इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे, कौन कौन से पॉइंट लेकर के आप उसे एलोबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, केवल मैं उधर आपको ले जा रहा हूं इशारे के तौर पर। देखिए, पहली बात तो यह है फ्रेंड्स कि जो जीएसटी काउंसिल बनाई गई है, देखिए जीएसटी काउंसिल के जो हेड हैं वो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, राइट? तो नो डाउट सेंटर का हो गया अध्यक्ष जो है वित्त मंत्री हो गए, और इसके बाद जो राज्यों के सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं या वित्त मंत्री हैं वो उसके सदस्य हैं। वित्त मंत्री ही या जनरली इसमें तो होंगे, या मुख्यमंत्री भी, तो उसके सदस्य हैं, तो सभी राज्यों का उसमें प्रतिनिधित्व हो गया। उसमें जो वोटिंग पैटर्न है वो जरा सा केंद्र के पक्ष में जरूर है, मतलब वहां जो भी फैसला होगा वो 75% वोटिंग से होगा, 75% याद रखिए। तो ये एक थोड़ा सा मामला है। अब आप देखिए कि अभी जीएसटी में क्या हुआ है। अभी जो जीएसटी हुआ है कि सर्वसम्मति से पारित हुआ, न्यूज में आपने सुना, लोकसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया, यानी कि सभी राज्य सहमत है। फेडरल स्ट्रक्चर का बड़ा खूबसूरत उदाहरण। फिर आपने देखी, आप देखिए कि इससे पहले बिल तो लोकसभा में पारित हुआ है, इससे पहले इन सबको काउंसिल ने पारित किया है, जीएसटी काउंसिल ने पारित किया है, वहां भी आप देखिए कि सारी चीजें सर्वसम्मति से पारित हो रही हैं। यानी कि अगर राज्यों को आपस में बिठाकर बातचीत की जाए तो जटिल से जटिल मुद्दों पर, क्योंकि जीएसटी बहुत जटिल मुद्दा है, कितने साल से चल रहा है, उस पर भी कोई न कोई हल निकल गया, यानी कि जटिल से जटिल मुद्दों पर भी हल निकल जाता है, बशर्ते कि उस भावना से किया जाए। तीसरी चीज आप इसमें एक और भी देखेंगे कि इसमें राज्यों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था जीएसटी लागू करने में, राज्यों को यही एप्रिहेंशन था, तो उसके लिए केंद्र ने एक बहुत अच्छे अभिभावक का रोल प्ले किया, कहा कि ठीक है 5 साल तक आपका जो नुकसान होगा वह हम देंगे। तो ये एक बड़े लोग जो होते हैं ना, जैसे छोटे लोगों का ध्यान रखते हैं, यहां आपको वो पेरेंटल एटीट्यूड दिखाई दे रहा है कि नहीं आपका नुकसान नहीं होने देंगे। साथ ही साथ एक चौथा ये भी है कि जीएसटी में जो रास्ता निकाला गया है कि ठीक है बहुत से मामलों में तो पूरे के पूरे देश में एक ही टैक्स सिस्टम होगा, लेकिन कुछ मामलों में राज्यों को अधिकार भी दे दिए गए, जैसे देखा ना आपने अल्कोहल वगैरह के मामले में, पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, कि ठीक है इस पर आप अपना टैक्स लगाइए। तो कितना अच्छा आपको एक समन्वय दिखाई दे रहा है, तो समन्वय के बिंदु मैंने आपको बताए हैं। इन 3-4 पॉइंट्स को लेकर के आप संघवाद की चर्चा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब जो वक्त बचा है वो मैं देना चाहूंगा अपने कल के वायदे को पूरा करने के लिए, और वो आरटीआई से जुड़ा हुआ मामला है। आइए थोड़ा सा आरटीआई के बारे में बात थोड़ी सी कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आरटीआई पर मैंने कुछ आप लोगों को एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। आपने देखा होगा कि अब जो सरकार ने एक लोगों की राय मांगी है, तो आरटीआई में वो जो संशोधन करने जा रहे हैं उसमें 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको लेकर के एक तरीके से करीब विवाद की स्थिति बनी हुई है, और उसमें जो सबसे अधिक विवादास्पद जो बिंदु है उस पर ध्यान दीजिए। वह बिंदु यह है कि अगर किसी ने आरटीआई में कोई बात, कोई जानकारी मांगी है या कहीं अपील कर रखी है, राइट, और इस बीच में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर वो जो अपील है वो खारिज हो जाएगी, मतलब वो मामला खत्म हो जाएगा। ये व्यवस्था नए उसमें किए जाने की संभावना है। इसको लेकर के जो आरटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं, जो सिविक सोसाइटीज हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत जबरदस्त विरोध में हैं। आप याद कीजिए कि 2 दिन पहले मैंने विशेल ब्लोवर की बात की थी, उस विसिल ब्लोअर एक्ट में भी यही था कि जो सूचनाएं देगा उसका नाम कितना गुप्त रखा जा सकेगा। अगर मैं मान लीजिए किसी भ्रष्टाचार की सूचना सरकार को दे रहा हूं और अगर मेरा नाम रिवील हो जाएगा, लोगों को पता लग जाएगा, तो जिसके खिलाफ मैंने कदम उठाया है वो तो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। और ऐसी घटनाएं हुई हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, अक्सर ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। लगभग लगभग उसी तरह का जुड़ा हुआ मामला ये है। और सिविल सोसाइटीज ये कह रही है कि ऐसे में तो हो सकता है कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी जानकारी मैंने मांगी है, वो बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के अगेंस्ट है या पैसे वाले के अगेंस्ट है, और मैंने अपील कर रखी है और पता लगा कि अब ये तो अगर जैसे ही इसको सूचना मिल जाएगी तो बवाल मच जाएगा, तो ऐसे में मैं क्या करूंगा। ऐसे में जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि यार इसको किसी तरह से खत्म कर दो, इसकी सुपारी दे दो जिसे हम कहते हैं, और उसको खत्म करवा देगा, क्योंकि उसके खत्म होते ही वो मामला खत्म हो जाएगा। तो इसको लेकर के सिविल सोसाइटीज बहुत जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 2012 में भी आरटीआई में कुछ संशोधन किए गए थे, आरटीआई एक्ट में संशोधन किए गए थे। 2012 के एक्ट में भी ये प्रोविजन था, उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय भी ये प्रोविजन था, और उस समय सिविल सोसाइटीज ने इसका बहुत जबरदस्त विरोध किया, और उस विरोध के कारण फिर इस प्रोविजन को ड्रॉप करना पड़ा था। और अनफॉर्चुनेट पार्ट आप देखिए कि अब 5 साल के बाद जब फिर से आ रहा है तो फिर से उसे डाल दिया गया है। डेफिनेटली जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि इसे सरकार एक्ट में रख पाएगी, और अगर रख पाती है तो सरकार को बहुत जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे पास कुछ आंकड़े हैं, मतलब आंकड़े इस तरीके के हैं कि अभी तक सोचिए कि लगभग लगभग इस आरटीआई के तहत 60 लोगों की डेथ हो चुकी है, 60 लोग लगभग लगभग मारे जा चुके हैं, लगभग 160 लोगों को फिजिकली असॉल्ट किया गया है, मतलब शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाई गई है, और लगभग लगभग इतने ही लोगों को धमकियां दी जा रही हैं, जिंदगी की धमकियां दी जा रही हैं, और उसमें से कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं, सुसाइड किया है कुछ लोगों ने। तो ये इसलिए क्योंकि जिनके खिलाफ भी आप सूचना मांगेंगे, अगर वो कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है तो वो फिर इस तरह के हथकंडे अपनाता है, तो इसको लेकर के एक विरोध चल रहा है। दूसरा ये है कि उस एक्ट में ये भी किया गया है कि जब आप सूचना मांगेंगे तो उसके 500 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग बहुत बड़ा बड़ी बड़ी सूचनाएं बड़ी बड़ी चीजें दे देते हैं। तो इस तरह के थोड़े से, मतलब यूं कह लीजिए कि जो विरोध हो रहा है या जो बहस में चीजें आ रही हैं कि अब जो आरटीआई एक्ट है उसको थोड़ा सा जटिल बनाया जा रहा है ताकि उतना आसान न रह जाए, उसकी फीस बढ़ाने की बात हो रही है, इनको लेकर के भी आलोचनाएं हो रही हैं। तो आप जो एक्ट अभी देखते हैं पारित हो जाए या और चीजें हमारे सामने आएंगी तब उन पर आपको ध्यान रखना होगा, उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और बकायदे चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आपको उसे नोट भी करते जाना चाहिए। यहां मैं आपको एक दो पॉइंट स्पेशली बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, और इसे आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। पहला तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक डिसीजन दिया था और उसमें कहा था कि जो आरटीआई की जो अपील होती है ना, या कंप्लेंट जो आरटीआई के तहत किया जाता है, तो वो कोई सिविल या क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, है ना, वो कोई अपराध थोड़ी है, वो तो केवल एक सूचना मांगी गई है, और वहां किसी को कोई फैसला नहीं करना है, वहां ऐसा नहीं है कि किसी को कोई फैसला देना है, ऑफिस फैसला थोड़ी देती है, वो तो केवल एक सूचना प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का है, जिसको मैंने देखा है कि कुछ एडिटोरियल कमेंट में मेंशन भी किया गया है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट उसने ये कहा था इन्फॉर्मेशन कमीशन को लेकर के, जो हमारे सूचना आयोग है, कि देखिए जो सूचना आयोग है वो अगर कोई भी बात कहता है तो हमें यहां अंतर करना चाहिए कि जो सूचना आयोग है वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वो क्वासी जुडिशियल बॉडी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का मतलब है कि वो एक विशेष विषय पर सुनवाई करता है बस, क्योंकि वो उसके एक्सपर्ट होते हैं, वो न्यायिक बॉडी नहीं है, वो न्यायालय तंत्र के अधीन काम नहीं कर रहा है, वो न्यायालय को केवल सपोर्ट कर रहा है ना, उस न्यायालय का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, वहां जो अपॉइंट किए जाते हैं वो कोई न्यायाधीश नहीं होते हैं, वो तो अपने अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट होते हैं और उनको वहां अपॉइंट कर दिया जाता है। जो जुडिशियल बॉडी होती है वो तो न्यायालय के अधीन काम करती है, वो सारे के सारे जज होते हैं, वो चीजों को बहुत ही कानूनी निगाह से देखते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक और कथन है सुप्रीम कोर्ट का कि जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो सब के सब एक एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, क्वासी जुडिशियल ट्रिब्यूनल नहीं है। ये दो पॉइंट आपको हमेशा नोट कर लेना चाहिए, ये आपके क्वेश्चंस को स्ट्रांग बनाने में आपकी बहुत अधिक मदद करेंगे। तो दोस्तों, न्यूज एनालिसिस के बारे में इतना ही। मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर। कुछ फ्रेंड्स ने मुझे लिखा है कि सर, आप न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स को बहुत थोड़ा समय दे रहे हैं। देखिए, मैं आपके दिमाग के इस भ्रम को दूर कर दूं कि अभी मैंने जब बात की तो मैं किसके ऊपर बात कर रहा हूं, उसमें न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स ऑलरेडी शामिल हैं। और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स की इम्पॉर्टेंट क्लिपिंग्स होती हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। और इनफैक्ट अगर कोई बिल्कुल अलग ही विषय पर होता है तो फिर मैं उस पर बात करता हूं। समय इतना ही है, मैं अगर न्यूज एनालिसिस से कटौती कर दूं तो मैं न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स की बात कर सकता हूं, लेकिन उससे कोई फायदा इसलिए आपको ज्यादा नहीं होगा क्योंकि न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स में ऑलरेडी आपके पास लिखित रूप में वो चीजें मौजूद हैं। तो अगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं तो उसकी तो भरपाई हो जाएगी, लेकिन न्यूज की अगर मैं बात नहीं करूंगा तो फिर उसकी भरपाई नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको इस रूप में देखें। मेरी तरफ से कोशिश यही होती है कि जो आपके लिए इस समय के दायरे में, इस सीमा में रहते हुए मैं जो बेस्ट कर सकता हूं वह मैं करूं। तो इसे मित्रों आप लोग इस रूप में लें। अब मैं आता हूं ईमेल पर। ढेर सारे ईमेल मिले हैं, उसमें एक ईमेल है अनुराग का जो जौनपुर उत्तर प्रदेश से है। उन्होंने ये जानना चाहा है कि सर, क्या मैं आपके इस डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट के बारे में दूसरों को जानकारी दे सकता हूं। अनुराग, इसमें पूछने की बात ही नहीं है। मैं तब संकोच बस आप लोगों से अपील नहीं करता हूं कि आप लोग इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए, लेकिन अगर आपने अपनी तरफ से पूछा है तो मैं आपके इस भावना का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत आपकी इन भावनाओं का अभिनंदन करता हूं। और मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल जाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और आपके साथ ही मैं आज अपने सभी प्रिय श्रोताओं से ये अपील करता हूं कि आप इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी दें, चाहे वो लाइफ मैनेजमेंट का हिस्सा हो, चाहे वो डेली ऑडियो लेक्चर का हिस्सा हो। स्कूलों में जाएं, कॉलेज में जाएं, इंस्टीट्यूशंस में जाएं, उनको बताएं कि आप इसे शुरू करें, शुरू करके देखें, और अगर ठीक नहीं लगता है तो वो बंद कर दें। बल्कि सच पूछे तो मैं तो, अगर आप इजाजत दें तो, टारगेट भी फिक्स करना चाहूंगा कि मेरे जितने भी आप सब प्रिय श्रोता हैं जो मुझसे स्नेह रखते हैं, जो इस डेली ऑडियो लेक्चर और लाइफ मैनेजमेंट को महत्वपूर्ण समझते हैं, उन सब से मैं अपील करूंगा कि वो अपने लिए कम से कम 5 टारगेट तो रखें कि मैं 5 लोगों को इसे बताऊंगा, नहीं 5 लोगों को इसे एक्शन में लाऊंगा। मतलब उनको परसू कर करके मैं 5 लोगों को सुनाने की शुरुआत ही कर दूंगा। एक बार आप कर दीजिए, फिर वो अपने ढंग से उसको कंटिन्यू करेंगे या बंद कर देंगे। तो दोस्तों, सभी ईमेल लिखने वाले मित्रों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से कुछ साथियों के नाम हैं: सिमरनजीत सिंह लुधियाना से, निपुण शारदा न्यू दिल्ली से, सिद्धेश मकाजी मुंबई से, आरती नेताम, शंकर लाल मीना, अरविंद मिश्रा इलाहाबाद से, सुमित्रा त्रिपाठी बीएचयू वाराणसी से, रोशनी, विपिन कुमार बेगूसराय बिहार से, पुरुषोत्तम यादव जबलपुर मध्य प्रदेश से, शुभम अग्रवाल, कपिल तिवारी और हिमांशु अग्रवाल मथुरा से। तो आप सबका भी बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। 2 दिनों के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरी और एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, इन 2 दिनों के लिए सुखद शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।